ద్రౌపాది కీ జై అనంత కోటి వైష్ణవ భక్త వృంద కీ జై ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చచ్చురుల్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదామయ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్నితి నామిని. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణీ విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. రక్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యరేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమాప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరవసే నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత శ్రీవాసాది గౌరవభక్తవింద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఆరాధ్యో భగవాన్ వ్రజే సతనాయ తద్దామ వృందావనం రమ్యా కాచిదుపాసనా బ్రజవదుం వర్గేన వాకల్పితం శ్రీమద్భాగవతం ప్రమాణమమలం ప్రేమాపుమార్తో మహాం శ్రీచైతన్య మహాప్రభుర్మతమిదం తత్రాదరో న పరం యొంతః ప్రవిష్ట మమ వా చమిమా ప్రసూప్తా సంజీవయత్ కిల శక్తిధర స్వధామ్నం అన్యాశహస్త చ శ్రవణ త్వగాదీ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. యం బ్రహ్మా వరుణేంద్ర రుద్ర మరుత స్తుంతి దివ్యస్తవై వేదై సాంగ ప్రదక్షమోపనిషది గాయంతి యం సామగా ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో యశాంతం న విదో సురా సురగణా దేవాయ తస్మై నమః. గురువే గౌరచంద్రాయ రాధికాయ తదాలే కృష్ణాయ కృష్ణ భక్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ. तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस संडे प्रीति भोज कार्यक्रम में.
के बाद एक्चुअली संडे फिस्ट प्रोग्राम में पहली बार ले रहा हूँ मीरागढ़ में। वैसे भागवतम क्लास तो कई बार लिया लेकिन संडे फिस्ट प्रोग्राम नहीं किया था अभी तक। तो स्वागत है सभी भक्तों का। प्रभुपाद जी ने जो संडे प्रीति भोज कार्यक्रम रखा है जिसमें कि हफ्ते में एक दिन संडे के दिन सारे भक्त लोग एक साथ में इकट्ठा होके भगवान के गुणानुवाद कुछ कथाओं को श्रवण करें, तो बहुत सुंदर सिस्टम हर स्वान मंदिर में प्रभुपाद जी ने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी वरिष्ठ भक्त भी बैठे हुए हैं, कई सारे लोग माताओं में से भी कई वरिष्ठ माताएं भी हैं। तो सब लोग आप लोग मिलकर मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि वैष्णव के आशीर्वाद के बिना हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो सब लोग आशीर्वाद देंगे तो मैं जरूर कुछ ना कुछ प्रयास करूंगा बोलने के लिए। तो आज कुछ थोड़ा जल्दी बांट दीजिए, अभी यहाँ पे भी कुछ दीजिए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोग के हाथ में कुछ प्रिंट आउट्स मिले रहेंगे, कृपया शेयर करिए उसको। कम रहेगा तो एक के बीच में दो तीन लोग हो जाइएगा। तो देखिए, हम कृष्ण भावनामृत से काफी दिनों से हम लोग जुड़े हुए हैं। संडे को सब लोग भक्त आते हैं और काफी सिंसियर भी भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैंने जो आज विषय के ऊपर जो चर्चा करने आ रहा हूँ, विशेष करके भगवान के जो चरण कमल है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्योंकि ये जो चरण है भगवान का, हम गौड़ीय वैष्णव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि भगवान का जो दर्शन का जो प्रारंभिक शुरुआत जो होता है दर्शन का भगवान का, कैसे होता है, चरणों से दर्शन हम करते हैं। जिस प्रकार से हमारे आचार्यों के द्वारा बताया गया है कि हमको भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, चरण से करना चाहिए। एक्चुअली भगवान का दर्शन करने के लिए हमारे पास योग्यता नहीं है। हम क्या दर्शन कर सकते हैं अपने इस चर्म छक्षुओं से, हम क्या दर्शन कर सकते हैं भगवान का, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस बात को दर्शन वो कर सकता है, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, प्रेमांजनक छुरित भक्ति विलोचनेन। जब तक हम हमारे आंखों में प्रेम के अंजन नहीं लग जाते हैं तब तक हम भगवान का दर्शन कर नहीं सकते हैं। प्रेम के अंजन लगाना पड़ेगा। और ये प्रेम के अंजन हमारे आचार्यों ने कैसे भगवान का दर्शन करने का जो पद्धति बनाया है, हम उसको फॉलो करेंगे तब जाके ये प्रेम जो अंजन है हमारे आंखों में लगेगा। विशेष करके ये जो प्रेम भगवान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, केवल हरि कथा भगवान के गुणानुवाद कुछ कथाओं को सुनने से ही होता है। क्योंकि भागवत में बताया गया है कि जब तक हम भगवान कृष्ण के कथाओं को श्रवण नहीं करते हैं, क्योंकि नौधा भक्ति का प्रारंभ श्रवण से होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नौधा भक्ति का एक प्रारंभ ही होता है श्रवण से। क्योंकि हम जब श्रवण करते हैं तो वो कथाएं जब हमारे हृदय में जाती है तो हमारे हृदय के अंदर जो ग्रंथियां है ना फटने लगती है। ये ग्रंथि क्या है, संसार के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, बहुत सारे अन्य चीज विषयों में आसक्ति। तो ये जो इसको ग्रंथि बताया गया है शास्त्रों में, हृदय ग्रंथि। और ये हृदय ग्रंथि केवल भगवान की कथा को श्रवण करने से ही कटती है। और जब तक ये हृदय ग्रंथि, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अर्जुन तुम जितना मेरा स्मरण करोगे, जब स्मरण की प्रक्रिया कंप्लीट चलेगी तब जाके तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे में स्थिर हो जाएगा, अन्यथा मन और बुद्धि को मेरे में लगाना बहुत ही मुश्किल है, है ना। तो ये जो चरण कमल है भगवान का, जिसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, वैसे तो विषय बहुत लंबा है लेकिन जितना हो सके इस टाइम के एक घंटे में हम उतना उसको वर्णन करेंगे संक्षिप्त रूप से। तो चरण कमल विशेष करके हम गौड़ीय भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है भगवान का, क्योंकि एक दास का जो भाव होता है ना, एक दास का जो स्थान होता है वो भगवान के चरण कमलों में ही रहता है। तो ये चरण कमल के विषय में विशेष करके हमारे एक आचार्य है श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस चरण के महिमा को और विशेष करके भगवान के चरण में जो चिन्ह है, जिसका आपने वो प्रिंट आउट में देख रहे हैं, ये सारे चिन्ह हैं, और वैसे भगवान की भगवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए ये भी एक उदाहरण, ये भी एक प्रमाण है कि भगवान के चरण में ये चिन्ह है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के चरण में ऐसे चिन्ह नहीं होते हैं, साधारण व्यक्ति के चरण में ऐसे चिन्ह नहीं होते, लेकिन भगवान के चरण में ये सारे चिन्ह शास्त्रों में बताया गया है कि सारे चिन्ह भगवान के चरण कमलों में हैं। तो श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर एक ग्रंथ है को लिखते हैं जिसका नाम है श्रील रूप चिंतामणि। उस रूप चिंतामणि में भगवान के चरण कमलों के अंदर एक कुछ चिन्ह है, उसका वो वर्णन करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम दर्शन करते हैं चरणों का, तो हमको पूर्ण लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब हम इन चिन्हों का महत्व को जब समझ जाएंगे कि ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, एक एक चिन्ह क्या प्रदर्शित करा, इसको स्मरण करना चाहिए। तो अगर ध्यान से सुनेंगे तो शायद ये याद भी हो जाएगा। टोटल 19 चिन्ह है, दोनों चरण में मिलाकर टोटल 19 चिन्ह है, तो उनको आप ध्यान से सुनेंगे तो स्मरण हो जाएगा। तो जैसे कि भगवान भगवद गीता में इस बात को बताते हैं, मनमना भव मत भक्तो मध्याजी मानस गुरु, कई जगह पे बताया सर्व धर्मान परित्यज्य, कई जगह पे भगवान इस बात को बताते कि मेरे शरण को ग्रहण करो, मेरे चरण को ग्रहण करो, तब जाके तुम्हारा जीवन का जो सार्थकता पूर्ण होगा। तो कई जगह पे इस बात को बताया गया था, इसलिए जो दर्शन है वो चरण से हमको प्रारंभ करना चाहिए, और वो चरण की महिमा को और विशेष करके उस चरण में जो चिन्ह है, श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर अपने रूप चिंतामणि ग्रंथ में इस बात को वर्णन करते हैं। तो विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, एक एक करके हम उसको संक्षिप्त रूप में आज हम वर्णन करेंगे। ओके, देखिए चरण का एक्चुअली हम गौड़ीय वैष्णव के जीवन में चरण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जैसे कि देखते हैं कि रामायण के प्रसंग में ये उस समय की बात है कि जब माता सीता का अब रावण ने हरण कर लिया, माता सीता को हरण करके रावण आकाश मार्ग से उनको लेकर जा रहा था। उस समय माता सीता ने बहुत प्रयास किया उस रावण से बचने के लिए, बहुत प्रयास किया, लेकिन माता सीता का प्रयास विफल हो रहा था। तो उस समय माता सीता ने अपने कुछ आभूषणों को, शरीर के ऊपर जितने भी आभूषण थे, उस समय माता सीता ने उतार कर उसको एक पोटली में बांधकर नीचे डाल दिया, है ना। एक कथा से आप लोग परिचित होंगे, जानते होंगे कि माता सीता ने अपने आभूषणों को उतार कर एक पोटली में मार कर नीचे गिरा दिया। और उस समय की घटना है कि जब प्रभु रामचंद्र जब सीता की खोज में अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब निकलते हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी सीता की खोज में, रो रहे हैं, पेड़ पौधों पत्तों से सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। तो भगवान रामचंद्र सीता की खोज करते 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 उस स्थान पे पहुंचे जिस स्थान पे ये आभूषण माता सीता ने डाले थे, गिराए थे। तो भगवान रामचंद्र के हाथ में वो पोटली आभूषण लगा, और जैसे ही प्रभु राम ने उस पोटली को पकड़ा और देख रहे हैं तो एक एक करके आभूषण को निकालकर लक्ष्मण को बता रहे हैं कि लक्ष्मण देखो, ये सीता का आभूषण है, ये सीता का गले का चैन है, ये सीता का हाथ का कंगन है, उसकी ईयर रिंग है, ये सारे देखकर। जैसे ही वो आभूषण प्रभु रामचंद्र को प्राप्त हुआ, उनको अंदर ही अंदर एक प्रसन्नता का अनुभव हुआ, क्योंकि बहुत दुखी थे, लेकिन अभी पता चला कि सीता का कि जिसने भी अपहरण किया होगा इस मार्ग से लेके गया है, इसलिए वो उस आभूषण को देख के उनके अंदर थोड़ा उत्साह आ गया, और एक एक आभूषण को दिखाकर लक्ष्मण को बता रहे हैं। उस समय लक्ष्मण जी सुन रहे थे सारे, लेकिन लक्ष्मण जी नीचे मुड़ी करके कुछ बोल नहीं रहे। जैसे ही प्रभु रामचंद्र उसका वर्णन करके, आभूषणों का वर्णन करके समाप्त किए, उसी समय लक्ष्मण जी ने बोला कि माफ करिए, प्रभु, क्योंकि मैं इन क्योंकि मैं पूरे जीवन में मैंने मेरी माता सीता का मैंने चरण के ऊपर कभी दर्शन किया ही नहीं, चरणों के ऊपर मैंने माता सीता का कभी भी दर्शन नहीं किया, इसलिए मैं इन आभूषणों को नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये जो कंगन है और गले का हार है जो भी, लेकिन इसमें से एक आभूषण को मैं जरूर पहचान रहा हूँ। ये जो जो नुपुर है ना, जो माता सीता अपने चरणों में धारण करती थी, ये नुपुर को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि ये माता सीता का ही है, क्योंकि मैंने पूरे जीवन में माता सीता के चरण के ऊपर कभी दर्शन किया ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर एक दास का स्थान अगर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने में ही अगर जीवन पूरा निकल गया तो जीवन की संसिद्धि है, जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो चरणों की बहुत ही महिमा है। और वैसे भी ये जो चिन्ह है, जैसे कि भगवान कृष्ण अपने बाल लीला में नंद महाराज यशोदा माता, एक दिन की घटना है कि उन्होंने अपने आंगन में इन चिन्हों को देखा, ये भगवान के ये चरण चिन्हों को अपने आंगन में देखा। उस समय यशोदा मैया और नंद महाराज बाबा बोलने लगे कि यहाँ पे निश्चित रूप से नारायण निवास करते हैं, क्योंकि हमारे आंगन में नारायण के जो चरण चिन्ह है वो हमारे आंगन में पड़े हुए हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि और कोई नहीं, साक्षात ब्रजनंदन भगवान कृष्ण उनके बालक के रूप में आए हैं और उन्हीं के चरण चिन्ह है। तो इस प्रकार से ये जो चरण की महिमा है आचार्यगण बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। तो कृष्ण के दोनों चरण में मिलाकर टोटल 19 चिन्ह है, ताइए हम एक एक करके उन चिन्हों को स्मरण करते हैं। तो सबसे पहले एक चरण को लेते हैं, सबसे पहले कृष्ण का दाया जो चरण है, राइट साइड वाला जो दाया चरण है, उसमें टोटल 11 चिन्ह है। कितने हैं? 11। टोटल 11 चिन्ह है दाएं चरण में। तो उसमें से सबसे पहला जो चिन्ह है वह है जौ का, वो अंगूठे के बीच में देखिए, वहां पर लिखा है एरो मार्क मारा हुआ है, जौ लिखा हुआ है राइट चरण के अंगूठे के, एरो मारा हुआ है देखिए, अंगूठे और पैर के बीच का स्थान जो है ना, वहां पे जौ का, भगवान के चरण के उस स्थान पे जौ का चिन्ह है। तो ये जौ का जो चिन्ह है, सनातन गोस्वामी बात बताते हैं कि जो जौ है, अगर हम कृष्ण के चरण कमलों का जो दर्शन करते हैं, और विशेष करके एक जो जौ का चिन्ह है, यह इंगित करता है कि जो भी भगवान कृष्ण का शरण को ग्रहण कर लेता है उसके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है, विशेष करके धान्य की कमी कभी भी नहीं होती है। इसलिए देखिए, कभी भी भक्तगण अगर बाहर कहीं जाते हैं तो उनको बहुत सारे भिखारी लोग मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, लेकिन वो उनको या तो कुछ प्रसाद देते हैं या तो ये बोलते हैं कि आप आइए संडे को हमारे मंदिर में, हम आपको खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, है ना। इसके पीछे भाव क्या है? एक्चुअली कुछ पैसे हम दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है उन पैसों का वो दुरुपयोग करे, हो सकता है उस पैसों को गलत काम में लगाए, हो सकता है उसका शराब पी जाए, इसलिए उनको कुछ प्रसाद देते हैं। और विशेष करके तो उनको मंदिर बुलाते हैं, मंदिर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि देखिए वो उसके जीवन में भूखमरी है, उसको खाने के लिए रोज नहीं मिलता है, इसलिए तो रोड पे लोग मांगते हैं। तो उसको मंदिर बुलाने के पीछे यही उद्देश्य है कि एक बार अगर वो मंदिर आएगा, भगवान का प्रसाद तो पाएगा ही, और साथ साथ में अगर भगवान का दर्शन कर लिया और भगवान के चरणों का दर्शन कर लिया, तो उसके जीवन की जो परमानेंट समस्या है भूखमरी, वो क्या है, हमेशा के लिए चली जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जौ का जो चिन्ह है इंगित करता है कि हम भगवान के चरण को जितना स्मरण करेंगे, हमारे जीवन में कभी भी एक धान्य की समस्या कभी भी नहीं होगी हमेशा। और वैसे भी धान्य जो है वही लक्ष्य, हमारे रियल संपत्ति क्या है एक्चुअली, आजकल के लोगों के माइंड में हो चुका है कि ये कागज का नोट है, ये हमारी संपत्ति है, बैंक में जो पड़ा है वो संपत्ति है। एक्चुअली रियल संपत्ति क्या है? रियल संपत्ति होता है कुछ जमीन हो, सोना हो, घर के अंदर दूध हो, धान्य हो भरा हुआ, ये हमारी रियल संपत्ति है एक्चुअली, ये रियल संपत्ति है। तो जौ का जो चिन्ह है यह प्रदर्शित करता है कि हम अगर भगवान के चरण कमलों का जितना हम जितना ज्यादा स्मरण करेंगे उतना ज्यादा हमको प्राप्त होगा, है ना। देखते हैं ना, अभी जैसे कि मान लीजिए आप सब संडे वाले हैं, मगर सारे संडे लोग संडे को आते हैं, बहुत सारे लोग रेगुलर भी आते हैं, लेकिन काफी ज्यादा जो संख्या है वो संडे वालों की है ना। लेकिन मंदिर में जो फुल टाइम भक्त लोग रहते हैं वो पूरा दिन करते भी है तो क्या करते हैं, भगवान की सेवा ही करते हैं। पूरा दिन का उनका जो शेड्यूल है केवल भगवान की सेवा में जाता है। तो जितना ज्यादा, इसलिए उनके जीवन में कभी खाने पीने की कमी नहीं होती। आप सबको मालूम होगा कि जो मंदिर में रहने वाले भक्त लोग हैं उनको कभी खाने की समस्या नहीं होती है, हमेशा कितने सारे भोग महाप्रसादम के लाइन लगा रहता है, वो तो नहीं खाते हैं, मना करते हैं, है ना। सुबह दोपहर देखिए ना कितना भगवान जी को जितना भोग लगता है ना, कितने सारे भोग लगते हैं दिन भर में। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना स्मरण करेंगे उतना ज्यादा ये सारी चीजें अपने आप उपलब्ध है। हम क्या करते हैं, हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, हम क्या करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना गधा मजदूरी करते हैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। व्यक्ति धन क्यों कमाता है, घर में सुख और शांति के लिए कमाता है ना, क्यों इतना घंटों मेहनत करता है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर भगवान को केंद्र बिंदु बनाते हुए भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हुए उनका स्मरण अगर करेंगे तो ये चीजें अपने आप बहुत सुंदर तरीके से उपलब्ध हो जाएगी हमारे पास, है ना। तो इसलिए जो जितना ज्यादा कहते हैं ना कि आप हम कृष्ण के नाम पे होंगे तो कृष्ण हमारे काम पे होंगे, है ना। कई सारे भक्त लोग ब्रज के भक्त लोग कहते हैं कृष्ण हम जितना कृष्ण का नाम को लेंगे और उतना ही कृष्ण। और एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप देखिए कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को हांका, है ना। अर्जुन का रथ ड्राइवर बन गए, सोचिए भगवान ड्राइवर बन गए, एक ड्राइवर की क्या हैसियत है सोचिए। लेकिन केवल अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए, प्रबल भक्त के पाले पढ़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टले जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण उनकी जो भक्ति करता है तो निश्चित रूप से वो उनके उनकी सेवा में लग जाते हैं, निश्चित रूप से लग जाते हैं। अब देखिए कि दुर्योधन के पास एक नाई था, एक कथा आप लोग जानते होंगे, महाभारत में इस कथा का वर्णन है कि दुर्योधन के पास एक उसका सर्वेंट था, नाई था, वो भगवान कृष्ण का भक्त था, लेकिन वो काम करने के लिए, जैसे कि यहाँ सब लोग कृष्ण के भक्त बैठे हुए हैं, लेकिन काम करने के लिए किसी न किसी कंपनी ऑफिस में जाते हैं, कर्मी भक्ति के इधर काम करते हैं। इसी प्रकार से वो जो नाई था दुर्योधन की सेवा में डेली जाया करता था। एक दिन की घटना है कि वो उसको बीमार पड़ गया और या तो हो सकता है कि इस्कॉन मंदिर चला गया हो, क्योंकि मंदिर जाने के लिए बहुत सारे बहाने मारते रहते हैं, है ना। किसको पूरे साल में यात्रा करने के लिए, कथा सुनने के लिए किसको हम मार डालते हैं, है ना, कंपनी में लीव लगा देते हैं। एक भक्त आया था कुछ दिन पहले मेरे पास, बोला कि प्रभु जी अभी फुल टाइम ज्वाइन करना है। बोला क्यों, बोला कि अभी कोई छुट्टी बचा ही नहीं क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सबको मार दिया हूँ। तो उसी प्रकार से वो थोड़ा बीमार पड़ गया और जा नहीं पाया, नाई दुर्योधन की सेवा में जा नहीं पाया और अंदर अंदर बहुत डर फील कर रहा था, क्योंकि मेरा अगर गया नहीं और दुर्योधन इतना दुष्ट प्रवृत्ति का है और मुझे या दंड देगा या तो नौकरी से निकाल देगा, है ना। तो ये डर था उसके अंदर, लेकिन वो कृष्ण को याद कर रहा था कि प्रभु आप कृपा करिए और मैं आज जा नहीं सकता हूँ और कुछ तो हमारे ऊपर कृपा करिए। और महाभारत में वर्णन है कि उस समय भगवान कृष्ण नाई का वेश धारण करके उस दुर्योधन के पास गए और उसके चरण कमल को दबा रहे थे भगवान कृष्ण। दुर्योधन बोल रहा है कि नाई आज तुमने तो कितना सुंदर तरीके से दबा रहे हो, आज जितना आनंद की प्राप्ति हुई आज तक नहीं प्राप्त हुआ। उसको मूर्ख को यह नहीं पता कि अखिल ब्रह्मांड के नायक जो है उसके चरण कमल को दबा रहे हैं, उसके पैर को दबा रहे हैं। क्यों, क्योंकि भक्त की सेवा करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। ड्राइवर सोचिए कि कृष्ण जब अर्जुन का रथ हांक रहे थे तो उनको कितनी तकलीफ हो रहा था, वो चार घोड़े इतना तेजी गति से दौड़ाते थे घोड़ों को। वर्णन है कि जैसे कि मान लीजिए पंखा है ना, वो अगर बंद है तो क्या उसके तीन पत्ते दिखते हैं, लेकिन वो चलने लगता है तो एक सरीका हो जाता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण रथ को इतनी तेज हांकते थे ना कि वो रथ एकदम चक्र की तरह चलता था, इतना तेज गति से हांकते थे। और वो जो उनके घोड़ों के द्वारा जो धूल है ना, वो धूल कृष्ण के ऊपर बैठ जाता था। कृष्ण की स्थिति वैसी है, विष्णु पितामह इसको याद करके बोलते हैं, अपने भीष्म स्तुति में बोलते हैं इस सीन को याद करके कि प्रभु क्या वो दृश्य था, कौन सा दृश्य है, जब आप अर्जुन के रक्त को हाक रहे थे और जो घोड़ों के द्वारा चलने के द्वारा जो धूल था वो आपके ऊपर ऐसा बैठ कर बैठा हुआ था, जैसे कि मान लीजिए कोई आपने गेहूं का मिल देखा है ना, जहाँ पे गेहूं पिसता है, वो बंदा जो पिसता है गेहूं तो पाउडर उड़ उड़ के पूरा कैसा हो जाता है, दो ही चीज दिखता है, एक उसका होंठ दिखता है और दूसरा आंख दिखता है, क्योंकि आंख के ऊपर बाल होने के कारण उसकी आंख दिखते रहता है और होंठ बराबर वो जीवा का स्पर्श होने से वो आटे को खाता रहता है, इसलिए होंठ दिखता है ना। एकदम कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते हुए ऐसे ही दिख रहे थे और इसका वर्णन कर रहे हैं भीष्म पितामह कि प्रभु वो दृश्य क्या था जब आप अर्जुन की सेवा में लगे हुए थे, अर्जुन का ड्राइवर बने हुए थे और उस पे भी जब आपको पसीने होते थे ना, जब पसीने की बूंद चमकती थी प्रभु जी, प्रभु आपका क्या सुंदरता था, इस सुंदरता का वो केवल मैंने देखा क्योंकि मैं आपके सामने था, उस सुंदरता को अर्जुन ने भी नहीं देखा क्योंकि अर्जुन कृष्ण के पीछे बैठा हुआ था। विचार किए ड्राइवर बने और उस समय अर्जुन भी इतना तीव्र गति से लड़ा करता था युद्ध। वर्णन है महाभारत में कि जब भी लेफ्ट राइट जाना होता था तो इतना टाइम नहीं था अर्जुन के कि लेफ्ट चलो राइट बोलो चलो, वो तो उसका दोनों हाथ इतना और बुद्धि ये सब लगा हुआ था युद्ध में ना, जब लेफ्ट राइट जब चलना होता है ना तो अपने पैर से लेफ्ट में टच करता था कृष्ण को और इधर राइट में टच करता था, वो समझ जाते थे इधर चलना है इधर चलना है। विचार करिए कृष्ण अपने भक्त के लिए क्या क्या करते हैं, ड्राइवर बन गए। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है कि हम जितना स्मरण करेंगे इन चरण का, तो ये जौ का जो चिन्ह है वह यह इंगित करता है कि हमारे जीवन में कभी भी कमी नहीं होगा। एक घटना याद है मुझे कुछ दिन पहले की, 20-25 दिन पहले मैं यहाँ पे जब आया था, तो कभी भी आता हूँ तो हमारे जो पुजारी हेड पुजारी हरिनाम प्रभु है तो दोपहर का राजभोग देते हैं खाने के लिए, तो मैं राजभोग खाया जैसे ही दोपहर को, उसी समय हमारे आश्रम में रहने वाले नंद दुलाव कन्हाई प्रभु कुछ केला लेकर आए, मैं जस्ट प्रसाद लेके ही उठा तो केला लेके आप मुझे दे लीजिए केला, इलायची केला लेके आए थे, तो वो दे रहे थे मुझे, बोला अभी जस्ट मैंने प्रसाद पाया अभी नहीं पाऊंगा। तो जैसे ही मैंने उनको इस प्रकार से बोला तो वो थोड़ा सोच में पड़ गए केला लेके, तो जी मैं तीन लोगों ने मना किया, तीसरा व्यक्ति आप दो लोगों ने मना किया कि मैं नहीं खाऊंगा ऐसा करके, आपके पास तीसरे लोग के पास लेके आ रहा हूँ आप भी मना कर दे केला, इस बार में केला नहीं खाते हैं जी। बोला कि मैं वही सोचने लगा कि अच्छा दो लोग के पास से जाके आए तो, बोला हाँ ब्रो जी दो लोग के पास दोनों ने भी मना किया, बोले कि नहीं अभी अभी खा लिया मैंने अभी नहीं खाऊंगा, बोला हाँ शायद इस्कॉन में केला नहीं खाते होंगे क्योंकि इतना महाप्रसाद अवेलेबल है ना, अभी केले को कौन छीलेगा, छीलना पड़ता है ना इसलिए नहीं खाते हैं लोग। तो मैं कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम कृष्ण के इन चरणों का अगर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी ये धन और धान्य की कमी कभी भी नहीं होता है। और दूसरा चिन्ह है जो कृष्ण के इस चरण में, दूसरा चिन्ह है चक्र का चिन्ह है दूसरा, देखिए उसमें देखिए भगवान के इन चरणों का महिमा को बताते हुए गोपियां श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जहां पे भगवान कृष्ण उस रास स्थली को जब छोड़ के चले जाते हैं, जब गोपियां उनको ढूंढने लगती हैं, कृष्ण को जब गोपियां ढूंढने लगती हैं तो उस समय गोपियों ने कुछ गोपी गीत को गाया, वहां पे 19 श्लोकों में उस गीत का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और उस 19 में से एक जगह पे एक श्लोक में भगवान के चरण कमल की महिमा को गाते हैं गोपियां, और गाते हुए कहते हैं एक श्लोक में प्रणत देहिनां पापकर्षणं त्रिणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिर्फणार्पितं ते पदाम्बुजं तृणकुचेषुना क्रन्देच्छयम्। गोपियां इस गोपी गीत में भगवान के चरण कमलों की महिमा गाते हुए कहते हैं कि प्रणत देहिनां पाप कर्षणं, हे प्रभु, इस संसार में जीव जो है तड़प रहे हैं, त्रिताप उनके ऊपर लगा हुआ है, तड़प रहे हैं, लेकिन ऐसे जो इस संसार में देहधारी जीव है, प्रणत देह ना देहधारी जीव है, अगर ये चरण उनको प्राप्त हो जाता है, आपके चरण की उनके ऊपर कृपा हो जाती है, तो उनके जीवन में जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे चरण कमल प्रभु जो तृण चरानुगा जो गायों के पीछे बछड़ों के पीछे आप चराते हुए उन घासों के ऊपर अपने चरण को रखते हैं, और ऐसे चरण जो श्री श्री निकेतना जो लक्ष्मी जी को भी बहुत दुर्लभ है, ऐसे चरण कमल प्रभु। और इतना ही नहीं, उन चरणों का कृपा फणिर फणार्पितम ते पदाम्बुजम, उन चरण कमलों का जब ही जैसी स्पर्श उस कालिया नाग के ऊपर हुआ, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। प्रभु ऐसे चरण कमल आप हमारे से कहां गायब हो गए, ऐसे चरणों को आप हमारे स्तनों के ऊपर रखिए, ताकि हमारे अंदर जो ये काम वासना की काम वासना है वो सब नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से गोपियां उस गीत में भगवान के चरणों की महिमा बताती हैं। तो विशेष करके इस चरण में जो चक्र का जो चिन्ह है, यह दर्शाता है कि भक्तों के जीवन में अगर दुख होता है तो तुरंत ये जो चक्र है तुरंत रक्षा करता है। ये हम देखेंगे कि नवम स्कंद में जहां पे अम्बरीश महाराज और दुर्वासा के प्रसंग में देखेंगे, दुर्वासा ने जैसे ही अम्बरीश महाराज के ऊपर क्रोधित हुए, उस समय तुरंत ही सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और दुर्वासा जी का पीछा कर लिया, है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस चक्र को आदेश देकर रखा हुआ है कि जब भी मेरे भक्त के ऊपर संकट आए तो मेरे परमिशन का वेट मत करना, तुरंत निकल जाना, इसको छूट देके रखे हुए हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के बाजू में हम सुदर्शन का डेली दर्शन करते हैं, है ना, उनके प्रणाम करते हुए उनको प्रणाम करते हैं, तो सुदर्शन की उसमें महिमा को पता चलता है। क्या है प्रणाम मंत्र? सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समाप्रभा अज्ञानतिमिरान्धस्य वैकुण्ठाब्द प्रदर्शक। सुदर्शन महाज्वाला, ये जो सुदर्शन है भगवान के चरण में जो चिन्ह सुदर्शन का है, सुदर्शन महाज्वाला, ये कोटि 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 सूर्य समप्रभा, एक कोटि सूर्य के समान तेजवान है। और करता क्या है? अज्ञान तिमिरांधस्य, हमारे जो अंदर अज्ञान रूपी जो अहंकार है, अज्ञान है, उसको नाश करता है। और इतना ही नहीं, क्या करता है वो? वैकुंठाब्द प्रदर्शन, और भगवान के धाम को प्रदान करता है। ये सुदर्शन, ये जो चक्र है भगवान के चरण में, ये हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं उसको दूर करता है, और भगवान ने इसको इस सुदर्शन को परमिशन दे के रखा हुआ है। ये चरण कमलों की महिमा, निश्चित रूप से हम जब भगवान के जब चरण को शरण को ग्रहण कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो ये अज्ञानता है उसका नाश हो जाता है। एक प्रतीक सुदर्शन का जो इसी चीज का प्रतीक करता है कि हमारे अंदर जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है, और हमारी जो इच्छाएं हैं कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना, ये जो इच्छाएं हैं वो हमारी पूर्ति हो जाती है। रामायण के उस प्रसंग में आप देखिए, जहां पे विभीषण जब इस बात को बता रहा था, बार बार रावण को इंगित कर रहे थे विभीषण जी कि तुम सीता माता को छोड़ दो, क्योंकि सीता को जब तुम नहीं छोड़ोगे तो ये जो सीता है तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। बार बार उपदेश कर रहे थे उनको, बार बार समझा रहे थे रावण को, एक्चुअली कई लोगों ने समझाया, विभीषण ने समझाया, और स्वयं रावण का पुत्र ने भी रावण को समझाया, प्रहस्त उसने भी समझाया, और अंगद ने लास्ट बार आके प्रभु रामचंद्र विचार करिए, सेतु बनाने के बाद जब ही लंका के निकट पहुंच चुके उस समय अंगद जी को भेजे लास्ट बार, विचार करिए इतना उद्यम करने के बाद, इतना बड़ा सेतु बनाने के बाद प्रभु रामचंद्र अंतिम बार फिर से भेजे अंगद को, जाओ समझाओ, अगर अभी भी छोड़ देता है सीता को रावण तो मैं यहां से रिटर्न चला जाऊंगा पूरी सेना लेकर। लेकिन ये विभीषण बार बार उनको समझाया, लेकिन रावण समझा नहीं और क्या किया, विभीषण को लात मार के भगा दिया लंका से। लात मार के लंका से अपने भाई को भगा दिया, कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। तो लात मार के विभीषण को रावण ने भगा दिया लंका से। और जब भगा दिया तो उस समय विभीषण जी तुरंत निकलकर प्रभु रामचंद्र का जो छावनी था उधर निकल पड़े, रात्रि के समय में ही उधर निकल पड़े। और जैसे ही ये श्री रामचंद्र के जितने भी सैनिक थे, अनुचर थे, उनको जैसे ही पता चला कि लंका से कोई एक राक्षस निकल के हमारे छावनी हमारे शिविर की तरफ आ रहा है, तो तुरंत ही उस सैनिक ने आकर जामवंत जी को बताया कि कोई एक राक्षस आ रहा है, क्या करें उसको, आप बताइए तो हम उसको उधर ही मार देते हैं, जरूर हमारा कोई भेद जानने आ रहा होगा वो। तो उस समय जामवंत जी प्रभु रामचंद्र के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि प्रभु एक कोई राक्षस लंका से निकलकर हमारे शिविर की तरफ आ रहा है, अगर आपकी आज्ञा है तो बताइए हम उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं। प्रभु रामचंद्र ने बोला कि नहीं, वो अकेला है, आने दो, क्या बोलता है हम सुनते हैं उसको, आने दो। तो विभीषण जी चल के आए प्रभु रामचंद्र के पास और जैसे ही प्रभु रामचंद्र को देखे तुरंत ही विभीषण ने प्रभु रामचंद्र को साष्टांग प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, रामायण में वर्णन है कि उस समय प्रभु रामचंद्र ने विभीषण को उठाया और विभीषण को उठाते समय ही बोला कि उठो लंकेश। ये सुनकर तुरंत ही जामवंत जी बोले कि प्रभु आप क्या बोले, आपका विभीषण को आपने लंकेश बोला, अरे लंका का राजा तो रावण है, आपने विभीषण को लंकेश बोल दिया, प्रभु अभी तो युद्ध नहीं हुआ, अगर युद्ध में हम हार गए तो क्या होगा। जामवंत जी भगवान रामचंद्र को बोला, अगर युद्ध में हम हार गए, आपने अभी से इनको लंकेश लंका का राजा बना दिया, अगर हम युद्ध में हार गए तो क्या होगा। तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि जामवंत जी ये रघुकुल का रीत है, क्या है, रघुकुल रीत सदा चलिया आई, रघुकुल रीत सदा चलिया आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। ये रघुकुल का रीत है कि एक बार मैंने वचन दे दिया तो निश्चित रूप से उसको पूरा करूंगा, और आप चिंता मत करिए, अगर युद्ध में हम रावण के साथ हार भी गए तो लंका तो नहीं दे सकता, लेकिन इस विभीषण को अयोध्या का राजा जरूर बनाऊंगा, लेकिन राजा जरूर बनाऊंगा। ये देखिए भगवान का शरण ग्रहण करने मात्र से क्या होता है। इस प्रसंग को लेकर प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, इस प्रसंग को लेकर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने घोर तपस्या किया, आप विचार करें जब रावण तपस्या कर रहा था तो अपने दसों मस्तक शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने दशा आनंद ये रावण जो है अपने एक एक मस्तक को काट कर आहुति देने लगा और शिव जी को प्रकट होना पड़ा। उस समय शिव जी प्रसन्न होकर रावण को क्या दिया, सोने का लंका दान में दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने इतनी घोर तपस्या किया, उस लंका को विभीषण ने केवल मात्र प्रभु रामचंद्र के शरण में प्रणाम करने से प्राप्त कर लिया। ये है प्रभु राम भगवान का शरण ग्रहण करने का ये महिमा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए हमको भगवान के चरणों को ऐसे पकड़ लेना चाहिए और हमको इन चिन्हों को स्मरण जब हम करेंगे ना तो हमारा जो रियल कृपा है हमको प्राप्त होगा। तो ये जो चिन्ह है, दूसरा चिन्ह और तीसरा जो चिन्ह है छत्र का चिन्ह है, छत्र मतलब छाता, जानते हैं ना सब लोग छाता, बारिश में छाता यूज करते हैं ना, वो छत्र का चिन्ह है भगवान कृष्ण के चरण में। तो ये छत्र का जो चिन्ह है एक्चुअली ये इंगित करता है कि अगर हम भगवान के चरण को ग्रहण कर लेते हैं तो ये जो छत्र है, छत्र क्या करता है, हमको धूप से रक्षा करता है या तो बारिश से रक्षा करता है। तो ये जो छत्र है भगवान कृष्ण का शरण को अगर ग्रहण कर लेते हैं तो ये छत्र हमारे जीवन में जो ये दुख है, भौतिक संसार में हम जो दुख को झेल रहे हैं, इन दुखों के का हमको रक्षा करता है, क्योंकि छत्र का यही कार्य है दुख से निवारण करना। तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इस संसार में जो है दुखों काल है, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं दुखालय शाश्वतम, ये संसार दुख, इस संसार में दुख के अलावा कुछ है नहीं एक्चुअली। हमारे हम जो सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो मिलने वाला है नहीं। विचार करिए कि ये जो संसार को बनाने वाला व्यक्ति ने, जिसने संसार को बनाया उस पर स्टेम मार दिया है। क्या स्टेम मारा है? दुखालयम अशाश्वतम। तो इस संसार को बनाने वाला व्यक्ति ने दुख का स्टेम लगा दिया है, तो वहां पे हम सुख की खोज कर रहे हैं तो इतनी मूर्खता है ना, कितनी बड़ी मूर्खता है। हम कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन संसार में दुख से बच ही नहीं सकते हैं, दुख आने ही वाला है। और सर एक बात बताऊं आप लोग को कि जब भक्त बन जाते हैं ना, तो भक्तों के जीवन में दुख और बढ़ जाता है। अभी आप लोग उठ के जाइएगा मत। भक्त जब हम बनते हैं ना, तो भक्तों के जीवन में और दुख बढ़ जाता है। भगवान भागवत में स्वयं इस बात को भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि तस्याम अनुग्रहामि हरिसे तद धनम सनम। जब कोई हमारा चरण को ग्रहण कर लेता है या भक्ति को स्वीकार कर लेता है, मुझे अपने जीवन में जब ला देता है, तो भगवान स्वयं इस बात को बताते हैं, जय श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारान की, किसी गौर निताय की। भगवान इस बात को स्वयं बताते हैं कि जब हमारा कोई भक्ति को ग्रहण कर लेता है, भक्ति करना चालू कर देता है, तो जब सबसे पहले मैं जब उसके ऊपर कृपा करता हूं, तो क्या करता हूं पता है? हरिसे तद धनम सनय, धीरे धीरे उसको धन को छीन लेता हूं। विचार करिए क्या होता है, सबसे पहली कृपा भगवान का, सबसे पहली कृपा वो जब अनुग्रह करते हैं हमारे ऊपर, तो धीरे धीरे वो कोई कुछ ना हो सकता है, डोनेशन के ही रूप में क्यों ना हो, लेकिन वो धीरे 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 सबसे पहली कृपा करते हैं तो उसके धन को छीन लेते हैं। अभी दूसरी कृपा भी है, और दूसरी कृपा करते हैं तो क्या करते पता है? घर के अंदर झगड़ा करा देते हैं। ये दूसरी कृपा है। आप देखिए जो भक्त बन जाते हैं ना, उनके घर में बहुत कम जमता है ना, परिवार के लोग ना, आजू बाजू के लोग गुरु के देखने लगते हैं, ये क्या भगत बन गया, तिलक लगा के और संडे अभी इधर नहीं उधर जाएगा, है ना, कैसे कैसे देखने लगते हैं लोग, है कि नहीं? हमारे समाज परिवार के लोग हमको अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि धीरे धीरे देखते देखते वो एक दिन वो भी आने वाले हैं। तो ये दूसरी कृपा है भगवान की, पहला धन को छीन लेते हैं और दूसरा अपने लोगों से जो समाज परिवार के लोग है उसमें झगड़ा लगा देते हैं। और लेकिन भगवान बोलते हैं कि तीसरी जब कृपा मैं उसके ऊपर करता हूं, उस भक्त के ऊपर, जो देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा गोलोक धाम को दे देता हूं मैं, ये तीसरी कृपा है भगवान की। ये भगवान बताते भागवत ने स्वयं इस बात को कि जो मेरे शरण को ग्रहण किया, जो मेरे भक्ति सब पहली कृपा, उसके धन को धीरे धीरे, उसकी जो संपत्ति धीरे धीरे छीन लेता हूँ, और दूसरी कृपा समाज के लोगों से और जो आसक्ति उसको कम करता हूँ, और तीसरी उसको वैकुंठ बोलो धाम प्रदान कर देता हूँ। तो मन में एक विचार आया होगा, कुछ भी गुरु जी धन छीन गया, अभी ये सब सारी चीजें हो जाएगा तो समस्याएं तो बहुत आती हैं। देखिए मैं पहले ही इसलिए बोला कि संसार ना दुखों का आलय है, आप कितना भी प्रयास कर लो दुख आने वाला है, लेकिन इस चरण में जो छत्र है ना, एक क्या कार्य करता है मैं बताता हूं अभी कि देखिए, मान लीजिए दो व्यक्ति है घर से निकले, एक के पास बारिश बहुत तेज हो रहा है, एक के पास छाता है और दूसरे के पास छाता नहीं है, दोनों बाहर निकले और बारिश हो रहा है दोनों के लिए, लेकिन एक के पास, जिसके पास छाता है उसको बारिश का अनुभव होगा, बारिश का जो दुख है उसको अनुभव होगा नहीं होगा, लेकिन जिसके पास छाता नहीं है उसको इस बारिश का अनुभव होगा। तो भक्त के जीवन में दुख तो आएंगे, क्यों? क्योंकि दुखालय अशाश्वतम, इस संसार जो दुखों का आलय है, तो भक्त भी तो इसी संसार में रह रहे हैं, तो दुख तो आने ही वाला है, उसमें कोई दुराय नहीं है कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन भक्त के जीवन में एक छत्र होने के कारण, क्योंकि भक्ति कर रहा है, छत्र होने के कारण उस दुखों का उसको अनुभव नहीं होता है, और जो भक्ति को स्वीकार नहीं किया उसको उन दुखों का अनुभव होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भक्त के जीवन में दुख आते हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि अगर दुख आ रहे हैं ना, समझ लो कृपा है, भगवान की कृपा है कि दुख आ रहे हैं। इसलिए कभी 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 भक्त लोग होते हैं ना, कुछ भक्ति कुछ दिनों करने के बाद जब इस प्रकार से सब छीन जाता है उनका ना, तो बहुत दोष देने लगते हैं, अरे जब से मैं कृष्ण हूँ, ये भक्ति को स्वीकार किया ना, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, आप कृष्ण की कृपा को याद करिए, ऐसा हो रहा है मतलब कृष्ण की कृपा है हमारे ऊपर, कृष्ण की कृपा है, इसको याद करना चाहिए। और ये जो छत्र है भगवान के चरण में, ये दुखों का हमको अनुभव नहीं करना, होने ही नहीं देता है, बहुत खुश रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जो चिन्ह है छत्र का, जो कि भक्तों के जीवन में ये दुखों का अनुभव नहीं होने देता है। तो और दूसरा चौथा चिन्ह है, टोटल 19 है, चौथा जो चिन्ह है, जितना होगा उतना करेंगे, चिंता मत करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको। चौथा जो चिन्ह है ऊर्ध्व रेखा, देखिए वहां पर लिखा रहेगा एरो मार्क में, ऊर्ध्व रेखा, अंगूठे के बाजू में तीर एरो मारा हुआ ना, एक रेखा है, शायद प्रिंट में हो सकता नहीं है, लेकिन एक ऊर्ध्व रेखा है, वो इंगित करता है कि जो भी भगवान के इन चरणों को शरण को ग्रहण कर लेता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तोष्टा, उसके ऊपर की गति प्राप्त होती है, उसको ऊपर की गति प्राप्त होता है। अभी डिटेल ना जाए तो अच्छा है, एटलीस्ट एक एक पॉइंट को निकाल दे है? तो ये ऊर्ध्व रेखा जो ये इंगित करता है कि जो भी भगवान कृष्ण का चरण को ग्रहण कर लेता है, उसको हमेशा नीचे की गति होती ही नहीं है, ऊपर की गति ही होती है उसकी। और जो पांचवा जो चिन्ह है वो है कमल का चिन्ह, कमल। और ये जो कमल है ना, ये भक्तों के मन में प्रेम का जो लोभ है वो उत्पन्न कराता है, प्रेम का लोभ। मैं बोला ना शुरुआत में ब्रह्म संहिता से, प्रेमांजनक श्रुत भक्ति में, जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान कृष्ण के प्रति, प्रेम के अंजन जब हमारे आंखों में नहीं लगेंगे, तब तक हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये जो कमल का जो चिन्ह है ना, ये भक्तों के मन में प्रेम का जो लोभ है ना उत्पन्न कराता है। जैसे कि देखिए, भक्तों की तुलना की गई है भौरे के समान, प्रभुपाद जी इस बात को अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भक्त हैं उनको भौरे के, भौरों के समान तुलना दिया गया है शास्त्रों में, क्योंकि भौरा क्या करता है, बहुत दूर दूर से आता है और कमल के ऊपर बैठकर उस पराग को, उस रस को पीता है। जैसे कि आप सब भक्त लोग भी दूर दूर से आए हैं, कोई बोरीवली से, कोई कांदीवली से, कोई विरार नारा सपाड़ा वसई, है ना, दूर दूर से सारे भक्त लोग आए हैं, आकर क्या कर रहे हैं, कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और कृष्ण के कथा रूपी इस अमृत का पान कर रहे हैं, है ना, दूर दूर से आए। और प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहीं रहते हैं, आजू बाजू के लोग, है ना, जैसे बाजू में कौन सा पार्क है तो ऐसे आजू बाजू के बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि बहुत सारा विरोध करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी उन विरोधों करने वाले जो पास में ही रहते हैं, भक्त लोग दूर दूर से आकर उस रस का पान करते हैं, और कुछ लोग पास में रहते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो मेढक के समान है, क्योंकि वो मेढक क्या होता है, कमल के फूल के नीचे ही रहता है पानी में, लेकिन वो कभी भी आकर उसको पान नहीं करता है, उसको उसकी तुलना मेढक के समान किया गया है, है ना, जो कि हमेशा परेशान करते रहते हैं, है ना, आजू बाजू के लोग बहुत परेशान करते हैं, अभी तो पता नहीं, लेकिन पहले बहुत, जब मैं यहाँ पे था 2007 से लेकर 2012-13 तक मैं यहाँ पे था, तो तभी मंदिर नहीं था, तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल उस ग्राउंड में मनाते थे, तो मैंने परमिशन लेना भूल गया था साउंड का परमिशन लेना भूल गया था, तो कंप्लेंट चला गया और दो पुलिस वाले आए और लेके गए मुझे कि आप परमिशन नहीं लिया क्यों, क्योंकि बहुत सारा फोन आया था बाजू से, और इतना ही नहीं, और उस बिल्डिंग से बहुत पत्थर फेंका गया था स्टेज के ऊपर। तो इस प्रकार से आजू बाजू के लोग बहुत परेशान करते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे लोग जो है ना उस मेढक के समान है जो कि बाजू में ही रहते हैं लेकिन उसको पार नहीं कर पाते, लेकिन भक्तगण जो है इस पराग को, इस प्रेम को, इस रस को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आकर उस जगह पे बैठते हैं और उसका उसको प्राप्त करते हैं। तो और विशेष करके जो कमल का जो पुष्प है ना, ये हमेशा देखिए कि लक्ष्मी जी के हाथ में रहता है, हमेशा ये कमल का पुष्प लक्ष्मी जी का हाथ में रहता है, तो अगर हम कृष्ण के चरण को पकड़ लिया तो क्या होगा, लक्ष्मी जी हमेशा हमारे साथ में रहेंगी। हम उल्टा करते हैं, हम लक्ष्मी को पकड़ते हैं, कृष्ण को, भगवान को छोड़ देते हैं, लक्ष्मी को पकड़ने का बहुत प्रयास करते हैं, दिन रात पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक सिंपल सा फार्मूला है, देखिए लक्ष्मी एक पतिव्रता स्त्री है, हाँ वो प्रयास करता आती है, लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे कहते हैं ना, पैसा हाथ का मल है, आता है और चला गया, चला ही जाएगा ना। आपने केवल लक्ष्मी को पकड़ के लाया है, तो पति बद्धा स्त्री कितना दिन उसको पकड़ के रख सकते हो, वो तो चली ही जाएंगे ना। लेकिन कृष्ण को पकड़ के लाइए, देखिए वो पति बद्धा स्त्री है, वो कृष्ण को छोड़ के कभी नहीं जाएगी, तो लक्ष्मी हमेशा साथ में रहेगी। कृष्ण जहां पे हो, लक्ष्मी हमेशा उनकी सेवा में रहेगी। तो एक कमल जो है लक्ष्मी जी के हाथ में हमेशा रहता है, तो हम कृष्ण के चरण को पकड़ लेते हैं तो ये लक्ष्मी हमेशा साथ में रहती है। और लक्ष्मी हमेशा साथ में रहे तो आप लोग खुद ही अनुभव करिए, खुद ही विचार करिए क्या होगा। और उसके बाद छठा जो चिन्ह है वह है ध्वज का। ध्वज, ध्वज आप सभी को पता है, ध्वज जो होता है ना विजय का प्रतीक होता है। कोई विजयी हो जाता है ना तो झंडा लेके चलता है ना, झंडा लेके चलता है ना, तो ये ध्वज जो है विजय का प्रतीक है। एक गुंबज पे भी देखिए ध्वज लगा हुआ है, ये विजय का प्रतीक होता है। क्योंकि जहां पे कृष्ण रहते हैं, कृष्ण साथ में रहते हैं, निश्चित रूप से उस व्यक्ति का वहां पे उसको सक्सेस मिलेगा, उसको विजय की प्राप्ति होगी। कृष्ण अगर छोड़ के चले गए, कृष्ण साथ में नहीं है, तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी सक्सेस आएगा ही नहीं। इसको अनुभव अर्जुन ने किया। जब तक भगवान कृष्ण साथ में अर्जुन के थे, तब तक वो बड़े से बड़े युद्ध को, महाभारत युद्ध को भी जीत लिया। लेकिन महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद एक दिन की घटना है, जब भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, तो एक दिन की घटना है कि युधिष्ठिर महाराज को कुछ अपशकुन होने लगा। तो उस समय अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ द्वारका, जाओ और जाओ कृष्ण का कुछ खबर पता लेकर आओ। और अर्जुन निकल पड़ते हैं, द्वारका जाते हैं, और द्वारका जाते हैं तो पता चलता है कि कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर लीला समाप्त करके अपने धाम में चले गए। और उस समय जब अर्जुन रिटर्न आ रहे थे, तो भागवत में वर्णन है कि उस जंगल में कुछ बच्चों ने उनको परास्त कर दिया। उनके पास गांडीव था, सोचिए कि कितना महान धनुर्धारी अर्जुन, सब कुछ उनके पास था, लेकिन कुछ 14-15 साल के बच्चों ने उनको परास्त कर डाला, उनकी सारी शक्ति छीण हो गई। तो जहां पे भगवान कृष्ण है, निश्चित रूप से वहां पे विजय हमेशा साथ में रहेगा। इसकी संतुति भगवद गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने कर दिया धृतराष्ट्र को, लास्ट में बोल ही दिया, आप मानो या ना मानो। क्या क्या बोलता संजय? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सी विजयोर्भूते ध्रुवा नितिर्मतिर् मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पे भगवान कृष्ण और उनके भक्त हैं, निश्चित रूप से वहां पे विजय 100% है वहां पे। तो ये जो ध्वज है विजय का प्रतीक है, कि ध्वज अगर हम कृष्ण के चरण को पकड़ लेते हैं, उनका चरणों का स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा सक्सेस आएगा। सक्सेस होना है तो एक फॉर्मूला है कि कृष्ण के चरणों को पकड़ लीजिए। और सातवां जो चिन्ह है अंकुश का है। अंकुश जानते हैं क्या होता है? हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत इसको यूज करता है, अंकुश को। अंकुश को महावत यूज करता है, छोटा से 2-2.5 फीट का ये लकड़ी होता है, एक लोहा होता है। क्या करता है वो? हाथी को कंट्रोल करने के लिए वो रखता है हाथी को, क्योंकि हाथी जो है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ये अंकुश है, सोचिए कि एक छोटा सा व्यक्ति 6 फुट का उसके ऊपर बैठा हुआ है, 2 फुट के लकड़ी से इस भयंकर विशाल पशु जिसके अंदर इतना बल है, चैतन्य महाप्रभु इस हाथी की तुलना करते हैं कि अपराध से तुलना करते हैं चैतन्य महाप्रभु, कि जब हम अपराध करते हैं ना, तो उसी हाथी मतवाले हाथी की तरह है। तो ये जो हाथी है, एक छोटी अंकुश जो है ना, इस हाथी को कंट्रोल करता है। और ये हाथी की तुलना हमारे मन से किया गया है। हमारा मन ना है बहुत बलवान है, बहुत चंचल है। अमेरिका का नाम लेते ही अमेरिका में बैठ जाता है, बैठ गया ना, है ना। कितना एक्चुअली सारा समस्या मन ही से ही है। एक्चुअली इसी मन को, इस मन को कंट्रोल करना है ना, तो हम कृष्ण के चरण को जब याद करते हैं ना, तो चरण में जो अंकुश है ना, ये हमारे मन को कंट्रोल करने में मदद करता है। और बहुत आसानी से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। या अंकुश, अंकुश यह चिन्ह करता है। क्योंकि देखिए मन जो है ना व्यक्ति को नीचे भी गिराता है और ऊपर उठाता है। शास्त्रों में वर्णन है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोचय बांधाय विषया संगे निर्मुक्ता विषय मना। मन एवं मनुष्यानाम, मनुष्य का ये जो मन है ना, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोचय, ये बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। मोक्ष की प्राप्ति हुई तो मन ही कारण है, क्योंकि मन को कृष्ण में लग गया और बंधन मतलब नीचे गिरा तो भी ये मन ही कारण है। बांधा है विषया संगे, विषयों के संग बांध देता है और निर्मुक्ता विषय बना और इन विषयों से निकाल भी देता है मन। तो ये जो अंकुश है ये हमारे हाथी रूपी ये जो मन है बलवान, इसको क्या करता है वो, जैसे एक महावत अंकुश के द्वारा हाथी को कंट्रोल करता है, वैसे ही अंकुश भगवान कृष्ण का जब हम चरणों को स्मरण करेंगे तो अंकुश हमारे मन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। अन्यथा कोई उपाय नहीं है इस मन को कंट्रोल करने के लिए, कोई उपाय नहीं। हम कितना भी प्रयास कर ले अपने आप से कभी भी मन कंट्रोल में आ ही नहीं सकता है, केवल एकमात्र कृष्ण की कृपा से ही हो सकता है। तो ये अंकुश जो है मन को कंट्रोल करने का एक सही, अगर हम कृष्ण के चरण को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे मन बहुत सुंदर तरीके से कंट्रोल हो जाता है। और आठवां जो चिन्ह है वो वज्र का है, पवी लिखा हुआ, पवी PAVI, वो संस्कृत में पवी बोलते हैं उसको, तो वज्र है। ये वज्र इंगित करता है कि अगर कृष्ण के चरण को कोई ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है तो क्या होता है, वो ये वज्र जो है ये इंद्र के पास ही वज्र होता है, ये इंद्र के समान शक्तिशाली बन जाता है, भक्त इंद्र के समान शक्तिशाली बन जाता है। ये वज्र यह इंगित करता है और इंद्र के समान शक्तिशाली बनना, इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कभी कभी हम ना भक्ति करते हैं तो बहुत सारे देवी देवताओं को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, ये रॉन्ग है एक्चुअली। कभी भी हमको देवी देवताओं को हमेशा सम्मान करना चाहिए। विचार करिए कि इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत महान भक्त है भगवान का। सोचिए, विचार करिए कि भगवान को कुछ शिक्षा भी देना रहता ना, इस इंद्र को चुनते हैं भगवान, इस इंद्र को चुनते हैं। और वहां पे वर्णन है जहां पे कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है भागवत में प्रमाण के साथ। क्या कह रहे हैं, एते चांस कलाह पुंसा कृष्णस्तो भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है, सारी कलाओं से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, कृष्ण है। उस जगह पे इस इंद्र का वर्णन है जहां पे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे कलाओं से युक्त भगवान कृष्ण है, ये प्रमाण दिया गया है। उस जगह पे बताया गया है इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति, वो कृष्ण क्या करते हैं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। वो कृष्ण जो है बार बार जब भी प्रकट होते हैं तो इंद्रारि व्याकुलम लोकम, ये इंद्र आदि देवता है ना, इनकी रक्षा के लिए बार बार वो प्रकट होते हैं। तो कितने महान भक्त है, तो इस प्रकार से इंद्र के समान शक्तिशाली बन जाता है। इंगित करता है कि इंद्र के पास जो वज्र है ना उसके समान शक्तिशाली बन जाता है अगर कोई कृष्ण के चरण को ग्रहण कर लेता है। और नवा जो है अष्टकोण है, दाहिने चरण में जो नवा है अष्टकोण है, और यह प्रदर्शित करता है कि जब भी हम भगवान कृष्ण के चरण को ग्रहण करते हैं तो ये हमारी सारी दिशाओं से अष्ट दिशाओं से हमारा ये रक्षा होता है, या तो उसको आठों दिशाओं का साम्राज्य उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये अष्टकोण इंगित करता है। और नौ दसवां जो है वह स्वास्तिक का चिन्ह है ना, स्वास्तिक सब लोग जानते होंगे स्वास्तिक का चिन्ह है ना। और हो सकता है कि आज के समय में बहुत लोग नहीं भी जानते हों क्योंकि अभी तक जवाब चला गया, अभी अलग अलग फैशन है, क्योंकि घर के आगे स्वास्तिक का निशान बनाते थे क्योंकि मंगल का प्रतीक है स्वास्तिक, एक्चुअली मंगल का प्रतीक है। तो घर के सामने माताएं बहुत सुंदर तरीके से इस चिन्ह को बनाते हैं, लेकिन आजकल ये जमाना नहीं, अभी तो कुत्तों से सावधान इत्यादि अलग अलग चीजें। मैं एक बार भुलवाड़ा गया था, उधर नगर संकीर्तन कर रहे थे तो बंगलो एरिया में कर रहे थे ना, हर एक गेट पे कुत्तों से सावधान लिखा हुआ था, कुत्तों से सावधान। तो एक प्रोजी पूछे, प्रोजी कुत्तों से सावधान लिखा हुआ है लेकिन कुत्ता दिख नहीं रहा है, बोला गेट से बाहर निकला ना वही है। रख घर में कभी कभी कुत्ते नहीं भी रहते हैं तो भी लिखते हैं कुत्ते से सावधान। लेकिन ये आजकल के कलयुग के बद्धजीव इस प्रकार का डिजिटल, लेकिन ये जो स्वास्तिक का जो चिन्ह है ना या मंगल का प्रतीक है, इन सारे चिन्हों को उनको इंगित करना चाहिए घर के अंदर। लेकिन ये सब चला गया अभी। और उस आगे 11वां जो चिन्ह है जो कि दाहिने चरण कमल में अंतिम जो चिन्ह है वो जांबू। देखिए सबसे नीचे एड़े के पास जांबू, ये जामुन का चिन्ह है। जामुन जानता है ना सब लोग, काला काला जो जामुन होता है ना, तो वो जामुन का भी चिन्ह भगवान कृष्ण के चरण में है। ये जामुन जो है ना, एक्चुअली ये जामुन जो है ना, ये स्वर्ग का फल है। जामुन स्वर्ग का फल है। स्वर्ग में तीन नदी बहता है। चलिए थोड़ा सा स्वर्ग, दो मिनट के लिए स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग में तीन नदी होता है, एक जामुन, जामुन का जो फल होता है ना बहुत बड़े बड़े फल होते हैं। हाँ, वर्णन है पुराणों में कि हाथी इतने बड़े बड़े फल होते हैं और उसमें गुठली नहीं होता है। और जो जब वो फल गिरते हैं ना, तो फल गिरकर उसका जो जूस है ना उसका नदी बन जाता है, उसका नदी बन जाता है। और वो जो नदी है ना, जब चलते चलते उसके ऊपर जब सूर्य का जब प्रकाश होता है ना, तो सूर्य के प्रकाश के कारण ना वो जम जाता है। हाँ, उसको वो जमने के बाद वो सोना बन जाता है, जिसको जामुनक, जामुनक सोना बोला गया है। बहुत 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 कॉस्टली होता है। तो एक तो जांबू, ये जांबू अभी कृष्ण के चरणों में चिन्ह है जांबू का। तो ये जो स्वर्ग में जांबू का नदी, जांबू के रस का नदी बता, दूसरा आम रस का बता है। अभी आम रस जो है ना, यही सोम रस है। एक्चुअली हम जो सोम रस सोचते हैं ना कि हम सोम रस का पान करते हैं, देवता है जब भी माइंड में डालते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो शराब का पान कर रहे हैं। नहीं नहीं, शराब नहीं है, भौतिक जगत है, तुच्छ सारी चीजें, बेकार की चीजें स्वर्ग में नहीं रहता है, है? वो आम का जूस है। एक्चुअली सोम रस मतलब कि देवताओं को जब एनर्जी खत्म होता है ना, तो ग्लास लेके जाते हैं और सेम वैसा ही जैसे जांबू का फल होता है ना, वैसे बड़े बड़े आम का भी फल होता है और उसमें गुठली नहीं होता है, वो गिरता है उसका भी नदी बन जाता है। और उनको जब जैसे भी कमजोरी महसूस होता है, उनको लगता है कि मेरी ड्रिंक लेना चाहिए, वो क्या करते हैं ग्लास को ले जाकर उसको पी लेते, वही सोमरस है और कोई दूसरा सोमरस नहीं है। और तीसरी जो नदी होती है ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है स्वर्ग में। वहां पर सबसे बड़ी, सबसे सबके लिए जो समस्या बना हुआ है ना कि रोज ऑफिस जाना पड़ता है ना, वहां पे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, काम नहीं करना पड़ता है, वहां पे ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। लेकिन भगवान भगवदगीता में बोलते हैं कि छिड़े पुण्य, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, इसमें कोई दूरा नहीं है, स्वर्ग जाएंगे। लेकिन पुण्य जैसे ही छिड़ होगा, मृत्यु लोक विसंति, वापस इस मृत्यु जगत में आ जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए ताकि इस स्वर्ग वगैरह के चक्कर में नहीं, सीधा भगवान के धाम जाए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम, जो कहां कभी वहां से वापस ना आना पड़े। विचार करिए कि मान लीजिए हम कुछ पुण्य कार्य किए और यहाँ पे बहुत गरीब थे, गरीबी है सब, जो देवताओं के दृष्टिकोण से देखे तो कुछ नहीं है यहाँ पे, स्वर्ग चला गया मान लीजिए, सोचिए कि पुण्य छीन हुआ तो वापस आ गए मृत्युलोक में। तो एक करोड़पति व्यक्ति से वापस गरीब बनना कितना बड़ा टेंशन वाला कार्य है। सोचिए कि एक करोड़पति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति अगर वो उसका पतन हो गया, वो गरीब बन गया, रोड पे आ गया, करोड़पति से रोडपति बन गया, तो कितना दुख होगा उसको, है ना, दुख होगा कि नहीं। तो हमको वो सुख नहीं चाहिए, हमको उनके क्या भगवत धाम जाना चाहिए। तो इसलिए छिणे पुण्य मृत्युलोक के विषय, विशेष करके जामुन जो है ना, विशेष करके ये जामुन का जो चिन्ह है ना, इंगित करता है कि जम्बू द्वीप में रहने वाले जो निवासी है, हम लोग जम्बू द्वीप के अंदर रहते रहते हैं। रामायण वर्णन है ना, लघुस वर्णन कहते हैं जम्बू द्वीप भरत खंडे भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, है ना, जम्बू द्वीप, हम लोग जम्बू द्वीप के निवासी है। तो ये जो जांबू का जो फल है ना, इंगित करता है कि जम्बू द्वीप के निवासियों को एकमात्र प्रेम करने वाला अगर की जो है कोई तो किसी के शरण है, तो भगवान का चरण है, उस शरण में जाना चाहिए, उनके शरण को ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो जांबू का चिन्ह है ये इंगित करता है। तो ये हो गया भगवान के दाएं चिन्ह, ढाई बजे तक ना प्रभु जी, ताइए 5 मिनट में हम बाया चिन्ह भी कर लेते हैं, है ना। तो अभी बाया चिन्ह, बाया चरण में टोटल 8 चिन्ह हैं, टोटल 8 चिन्ह हैं। सबसे पहला जो है शंख, शंख का चिन्ह है भगवान के चरण, बाया चरण में शंख का चिन्ह है। और ये शंख जो है ये इंगित करता है कि अब सुबह कोई भी आरती अटेंड करते जब, तो भगवान को शंख में जल को अर्पण किया जाता है और बाद में उस जल को छिड़कते हैं भक्तों के ऊपर, है ना। तो ये शंख के अंदर जो जल होता है ना, हमारे अंदर जो त्रिताप है, संसार में हम जो तड़प रहे हैं ना, सुबह आरती भी गाते हैं, संसार दावा नल नीलो का है ना, प्राणाय कारो ने घना घनतम, इस संसार के जीव जो है ना तड़प रहे हैं, इस भौतिक संसार में रहकर जीव तड़प रहे हैं, लेकिन ये जो शंख के अंदर जो जल है भगवान का, हमारे ऊपर जब इस जल को छिड़कते हैं पुजारी लोग, तो हमारा इस संसार के जो जो दुख है ना, वो हमारा कटने लगता है। तो ये जो शंख है हमको त्रिताप से बचाता है। और उसके बाद दूसरा जो चिन्ह है भगवान के बाएं चरण में, वो है सम केंद्रीय वृत्त। देखिए गोला है जिसको खम लिखा गया, खम गोला है, एक गोलाकार वृत्त है। यह जो है आकाश का प्रतीक है, ये जो गोलाकार है आकाश का प्रतीक है, अर्थात ये जितने भी ब्रह्मांड है ये भगवान के चरण कमल, भगवान के अंदर ही सारे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का वर्णन शास्त्र में आया है कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और ये जो गोलाकार है इन्हीं ब्रह्मांडों आकाश का प्रतीक है, और जो कि भगवान कृष्ण के ही अंदर निवास करते हैं सारे सारे ब्रह्मांड। और विशेष करके उसके अंदर ना, उस गोलाकार के अंदर देखिए एक बिंदी होगा, शायद हो सकता है दिखने आया हो, लेकिन एक छोटी सी सेंटर सम केंद्रीय एक केंद्र बिंदु है। वह इंगित यह करता है कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके चरण कमलों के स्मरण करते हैं, उनके चरण कमलों को अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो ये उस रास मंडल को इंगित करता है। एक जो गोला है और उसके बीच में जो केंद्र बिंदु है ना, उस रास मंडल को इंगित करता है। कौन सा रास मंडल? जो कि रास नृत्य बंसी भट्ट के इधर भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ किया था, और उन गोपियों का केंद्र बिंदु कौन थे? कृष्ण थे। तो अगर हम चरण को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये जो रास लीला है जो कि जीवन का, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी भी उस रास नित्य रास मंडल के पास आकर लाइन लगाते हैं, लेकिन उनको दर्शन नहीं हो पाता है, लेकिन हम कृष्ण के चरण को अगर पकड़ लेते हैं, तो वो रास जो रास लीला का जो चिंतन है हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा। ऐसा हमको अलग से उस रास को ग्रहण करने का या पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रकट हो जाएगा। समकेंद्रीय वृत्त एक इंगित करता है। और तीसरा जो है वह धनुष का चिन्ह है। देखिए धनुष, ये जो धनुष है ना, ये अहंकार का प्रतीक है। एक्चुअली भगवान कृष्ण भगवान राम ने इस धनुष को तोड़ा था, है ना। तो ये धनुष अहंकार का प्रतीक है, और हम जब कृष्ण के भगवान के चरण कमलों को पकड़ते हैं, तो ये जो अहंकार रूपी जीवन में सबसे बड़ी समस्या है ना, इन अहंकार के कारण हो रहा है ना। बहुत हम ये अहंकार हमको इतना प्रेरित करता है, ये अहंकार के कारण ही ना हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एक्चुअली मैं और मेरा ये बहुत भयंकर अहंकार है कि मैं हूं और ये सब मेरे हैं। ये जो अहंकार है, ये धनुष इंगित करता है कि हमारे हृदय में जो अहंकार रूपी है, जो असुर बैठा हुआ है, उसका दमन हो जाता है। तो चौथा जो है वो गाय का खुर है। गाय का खुर से देखिए, गाय के खुर से बना हुआ चिन्ह है, बारिश के समय में या तो जमीन में देखिए, जब गाय चलती है ना, उसके खुर से चिन्ह बन जाता है। वो चिन्ह यहाँ पे भगवान के चरण में है। वो चिन्ह यह इंगित करता है कि अगर हम इस भवसागर से पार पाना चाहते हैं, इस संसार को भवसागर बताया गया है, जिससे पार पाना दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरुतया बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसको पार पाना चाहते हैं तो एकमात्र अगर भगवान कृष्ण के चरण को शरण को ग्रहण कर लिया तो ये जो संसार का जो भव सागर है हम उसको उसी प्रकार से प्राप्त कर पार कर जाएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे कि एक गाय के खुर से बना हुआ जो चिन्ह है, बारिश के समय में उस चिन्ह में क्या होता है, कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है और उसको कैसे हम तुरंत क्रॉस पार कर जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता है। इसी प्रकार अगर कृष्ण के चरण को हम पकड़ लिए, उनके शरणागत हो गए, तो ये भव सागर उसी खुर के अंदर जो जल है उतना ही होता है और उसको बहुत आसानी से हम पार कर जाएंगे। तो ये जो गाय के खुर से बना हुआ जो चिन्ह है वो यह प्रदर्शित करता है। और पांचवा जो चिन्ह है वो कुंभ का चिन्ह है, कलश कुंभ का चिन्ह है। और एक कुंभ में क्या है, अमृत है, अमृत कलश है ना। तो अमृत प्राप्त करने के लिए भी स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, है ना। मतलब जो भगवान की भक्ति करता है उसको अमृत की भी प्राप्ति हो जाती है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, है ना। अमृत की प्राप्ति उसको हो जाती है और इसका हम अनुभव भी करते हैं ना। हाँ, संडे को आते हैं, संडे को आते हैं तो अमृत ही तो मिलता है हमको महाप्रसाद के रूप में, है ना। इसको उनका फेमस है खीर या तो खिचड़ी, अभी क्या है आज मुझे नहीं मालूम, लेकिन खीर और खिचड़ी दोनों फेमस है, दोनों अमृत बताया गया है, है ना। या तो खीर खा के आया, नहीं तो खिचड़ी खा के आया, है ना। दोनों अमृत है, ये अमृत के समान है। तो ये जो कलश के अंदर, कलश जो है इसके अंदर अमृत है और जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ये अमृत अपने आप हमको प्राप्त हो जाता है। और वैसे भी देखे जब देवता और दानव में जब युद्ध हुआ था, दोनों ने सेम प्रयास किया लेकिन अमृत किसको मिला, देवताओं, क्यों मिला ये बहुत लंबा प्रसंग है। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहे थे कि भगवान की नजरों में सब समान है, लेकिन आदान प्रदान भी भगवान उसी प्रकार से करते हैं। भक्त ज्यादा आदान प्रदान करता है तो भगवान भी उसके साथ ज्यादा आदान प्रदान करते हैं, है कि नहीं। तो दोनों ने समान मेहनत किया, खूब मेहनत किया दोनों ने, बिल्कुल वैसे देखा जाए तो असुरों को ज्यादा तकलीफ हुआ उस वासुकी नाग की पूछ के पास, वो लोग थे ना मुख के पास थे, तो वो लोग ज्यादा परेशानी झेले, उसके बीच निकल रहा था, काले पड़ जा रहे थे, ज्यादा मेहनत किए वो लोग, लेकिन अमृत किसको मिला, क्योंकि भगवान के भक्तों को मिला, देवताओं को मिला। तो ये समुद्र मंत्र की हम कथा पढ़ेंगे तो डिटेल जान सकते हैं। और छठा जो है वो त्रिकोण का चिन्ह है, देखिए उधर अष्टकोण था और इधर इसमें त्रिकोण है, और ये त्रिकोण ना त्रिताप को दर्शाता है। इस संसार के त्रिताप कौन कौन से है, तीन ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक। इन तीनों तापों का एक जो त्रिताप है ना हमको तड़पा रहा है संसार में, त्रिताप। आदि भौतिक मतलब अपने लोगों से प्राप्त हुआ दुख को क्या कहते हैं, आदि भौतिक, या तो इस संसार के किस लोगों से प्राप्त हुआ जो दुख है उसको आदि भौतिक दुख बोलते हैं। और उसे भी देखा जाए तो अपने लोगों से ज्यादा दुख मिलता है। अब राजाओं की जब कथा पढ़ेंगे ना तो राजाओं के उनका जब पतन हुआ ना, उनके कोई नजदीक के ही लोगों के द्वारा पतन हुआ, नजदीक के लोग थे उन्हीं के कारण उनका पतन हुआ जो कि उनको धोखा दिए। तो इस संसार में एक्चुअली जो मैं और मेरा बोलते हैं ना, मैं और मेरा, मेरा कोई है ही नहीं, एक्चुअली मेरा कोई नहीं है, केवल कृष्ण होना चाहिए मेरा, कृष्ण ही मेरे हैं और वहीं पे हमको जाना है, मेरा कोई नहीं है। तो ये जो त्रिताप है, त्रिकोण यह दर्शाता है कि भौतिक संसार में जो त्रिताप है, आदि भौतिक और आदि दैविक मतलब देवताओं के द्वारा, इस संसार के लोगों से होगा और देवता भी हमको दुख देते रहते हैं। कभी भूकंप आ गया, कभी बहुत बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, इस प्रकार देवता, ये सारे देवताओं के द्वारा दुख दिया गया है। तो ये दूसरा दुख है जिसको आदि दैविक दुख बोलते हैं। ये बहुत इसका लंबा एक्सप्लेनेशन है लेकिन हमारे पास समय नहीं है अभी। और आदि आध्यात्मिक, ये आदि आध्यात्मिक दुख क्या है पता है, स्वयं हमारे मन के द्वारा जो दुख मिलता है इसको आदि आध्यात्मिक दुख बताया गया है, बहुत सूक्ष्म होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिताप भी हमको सताता नहीं है अगर हम कृष्ण के चरण को स्वीकार कर लेते हैं। और सातवां जो चिन्ह है वो ऊर्ध्व चंद्र का है, चंद्र अर्ध चंद्र है देखिए। और ये चंद्र देखिए शिव जी धारण करते हैं, है ना, जिनका धारण करने पर उनका नाम पड़ा चंद्रमौली, चंद्रमौली महादेव। हाँ, उड़पी में जाएंगे दर्शन करने के लिए तो वहां पे दर्शन होगा चंद्रमौली महादेव का। तो अगर इस चंद्र चरण को ग्रहण करते हैं, शरणागत होते हैं भगवान का, तो ये जो चंद्र चंद्र जो है शिव जी के जटा में चंद्र अर्ध चंद्र शिव जी धारण करते हैं, अर्थात शिव जी के जैसे महान वैष्णव महान भक्त बन जाएंगे अगर हम सही रूप से पूर्ण रूप से शरणागत भगवान के इस चरण को हो जाते हैं तो। और आठवां जो चिन्ह है वह है मीन का, मछली, मछली का चिन्ह है। और यह इंगित करता है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मछली का जो चिन्ह है, देखिए मछली कभी भी ना जल से बाहर रह नहीं सकती है, है ना, उसको हमेशा क्या चाहिए, रस चाहिए। रस के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, आप पानी से निकाल दीजिए उसको, कुछ ही समय में वो तड़प तड़प के मर जाएगी। इसलिए कहते हैं ना मछली जल की रानी है। आप बाकी किसी भी जंतुओं को आप पानी से निकाल दीजिए वो जी लेंगे, लेकिन मछली जी नहीं सकती है। इसलिए एक इंगित हो रहा है यहाँ पे मछली का जो चिन्ह के, कि जिस प्रकार से मछली रस के बिना नहीं जी सकता है ना, उसी प्रकार से देखिए जहां पे रस नहीं होगा वहां पे भगवान कृष्ण भी कभी नहीं आएंगे। ये पांच प्रकार के जो रस हैं, शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य, इन रसों में कहने का तात्पर्य है कि इन रसों के अंतर्गत ये हमको भगवान की सेवा पूजा करना है, है ना। ये रस होना चाहिए, क्योंकि रस नहीं रहेगा तो हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो ये रस, और उसे भी जहां ये रस रहता है वहीं पर भगवान आते हैं। तो ये जो मीन है, ये मछली है, इसका प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त रूप से भगवान का ये जो चरण है जो कि हम भक्तों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो हम कभी भी जब चरणों का दर्शन करते हैं ना तो इन सारे चीजों को थोड़ा स्मरण आना चाहिए हमारे माइंड में। स्मरण आएगा ना तो निश्चित रूप से उस चरण का दर्शन करने का जो रियल कृपा है, लाभ है, वो हमको प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तवृंद की जय। अभी सब रथ यात्रा भी है शायद कांदिवली में, वहां भी जाना भक्तों को। हरे कृष्णा।
कृपया करके 2 मिनट सूचना है आपके लिए, विशेष सूचना है, ध्यान से सुनिए। साधन के लोग अभी कार्य है, ध्यान रखिए। तो हमारे श्रीमान रमैया पंत इस मंदिर के बड़े नम्र भक्त हैं और बहुत ही यहाँ पे सेवा योगदान दिया है उन्होंने। और आज भगवान के अंतिम लक्ष्य है जीवन में जीवन भर भगवान के चरणों का प्रति प्राप्त करना, उस चरण के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि प्रदर्शन कैसे कर किया जाता है, चरण क्या महिमा है, कहाँ कहाँ से चरण क्या चरण करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से चरण का आश्रय ग्रहण करने के लिए हमने बड़े अच्छे से दर्शन किया है। इसलिए हम आभार कर सकते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब ये भगवान जी को देंगे और निवेदन करेंगे, इसी प्रकार आप आते रहिए, हम सबको भक्ति के मार्ग में और हमारा जीवन धन्य करते हैं। विशेष रूप से सुनना है कि कांदिवली